ओम शांति, ओम शांति। आज तो आप सभी का आबू घूमने का दिन था, तो ये तो बहुत सुंदर हिल स्टेशन है, तो सभी को आनंद आया होगा। अलग अलग भिन्न भिन्न जो स्थान है यहाँ के, देखकर थक तो नहीं गए? तो अभी ये जो सेशन रखा है आपके लिए, अनुभव की लेन देन। यहाँ 3 दिन हमने अलग अलग सेशन सुने और उसमें कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, हमारे जीवन में सुख शांति का अनुभव हम करें, हमारा जीवन और बेहतर बने, ये पूरा प्रयास किया गया कि आप ये सीखें यहाँ से। तो आपने यहाँ से क्या नई बात सीखी, क्या प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं, और कुछ संकल्प भी अवश्य करके जाएंगे। जैसे कोई भी तीर्थ स्थान पर हम जाते हैं तो कुछ हम दान करते हैं, तो दान कौन सा करना है यहाँ पर? अपनी कमी का दान करना है। तो भगवान का घर है और ये महान तीर्थ है, तो यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ शिव बाबा के सामने छोड़ने का संकल्प करके जाएंगे। तो हम अपने अनुभव में ये नहीं सुनाएंगे कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है, है ना, नेचर बहुत अच्छी है, ये तो है, लेकिन हमने सीखा क्या, हम क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या नई बातें जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, वो अनुभव हम सुनाएंगे। तो कुछ बहनों ने तो नाम दिए थे सुबह, जिन्होंने अपने नाम दिए थे अनुभव सुनाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, हाथ उठाएं। अच्छा, 1, 2, 3 ने नाम दिए थे, तो पहले आप आएंगे, फिर बाकी जो भी अनुभव सुनाना चाहेंगे वो अपना अनुभव आकर, आपको यहाँ माइक मिलेगा, सामने आएंगे आप।
आज विश्व परिवर्तन की न्यू सशक्त महिलाएं, ये 4 दिन का जो सेशन 4 से 8 जुलाई यहाँ पे हुआ, उसमें मैंने फरवरी से अपना, फरवरी मार्च से नाम दिया था वुमेन्स विंग में, लेकिन यहाँ आने को मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे। नाम तो दे दिया था, और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि लास्ट टाइम फरवरी अप्रैल 2022 में दीदी मैं आके गई हूँ, जब मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत बोले तो ड्यूटी करती थी मैं, लेकिन हर बार ये सोचती थी कि मिस्टर एक्सपायर हुए थे और वो रात को बात करके सोए और सुबह उठे ही नहीं नींद से, तो वो मैं हमेशा सोचती थी कि इन्होंने मुझे रात को आवाज दी होंगी, ये क्यों नहीं उठे, ऐसा सोचती थी। और ऐसे सोचते सोचते एक दिन मुझे कोमल दीदी, उनके तरफ जाने का मौका मिला चिकली सेंटर में, मैं चिकली से आई हूँ बुलडाना, तो चिकली सेंटर में वहां जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और दीदी बोले कि आप वुमेन्स विंग एक बार माउंट आबू में ज्वाइन कर सकते हैं, तो जाके आओ। तो उनके साथ में निर्मला दीदी आए थे जब मेरे साथ, और उनके साथ में यहाँ पे आई थी, और उस बार थोड़ा मुझे ऐसा खुद को डर लगता था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से जो लेके गई उस टाइम, तो जब से थोड़ा सा चेंज आ गया सब, मैं जनरल मैनेजर हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और वहाँ पे मेरे हाथ के नीचे 45 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और घर पे भी थोड़ी जिम्मेदारी आए, तो उसकी वजह से कैसे जाना, क्योंकि मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, वो मेरे पास है, मम्मी एक्सपायर हुए ने, तो सुबह शाम को पापा का करना पड़ता है मुझको, बाद में सासू माँ भी है, उनका भी आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो आने में थोड़ी सी ये हो रही थी मुझे, लेकिन मैंने तय किया था कि लास्ट टाइम इतना अच्छा लगा है तो इस बार मैं जाऊंगी, क्योंकि ये जो विषय था अपना वुमन्स सशक्त महिलाएं, सशक्त खुद को सशक्त बोलना बराबर नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं, ये मैं ये स्टेज पे ही सीख, यहां से ही सीखी गई थी कि अपना कर्तव्य क्या है, अपना खुद को पहचानो। मिस्टर गए, ये बहुत बड़ी मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी लॉस हुआ था, लेकिन फिर भी एक बच्ची के लिए मैं सिंगल पेरेंट होते हुए मैं, मुझ पर जिम्मेदारी थी कि मैं उसकी मम्मी भी बनूं और पापा भी बनूं, और आज मेरी बच्ची पुणे में पढ़ती है, इस वजह से कि मैंने उसको भी बहुत शांति से हैंडल किया। मेरा मैं खानदेश में दुलिया उधर के तरफ के लोगों की आवाज थोड़ी बड़ी है, और दीदी मैं जहाँ वर्किंग करती हूँ वहाँ पे सब एम्प्लॉय डरते थे सिर्फ आवाज बड़ी होने की वजह से। तो लास्ट टाइम मैं यहाँ से वो बातें लिख के गई थी, मीठा बोलो धीमे बोलो, तो वो बातें मैंने वहाँ पे बताई। मुझे ऐसे एक प्रोग्राम में बोलने का अवसर मिला, और जैसे अपना महिला दिन का प्रोग्राम था तो उसमें मैंने बताई, तो बोले आप सेंटर से ज्वाइन है क्या, उन्होंने पूछा था मुझको, तो हाँ छिकली सेंटर से ज्वाइन हूँ और एक बार माउंट आबू जाके आई हूँ। माउंट आबू में आके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मायके आई हूँ। यहाँ से अभी तीन दिन भी मैंने जो भी सीखा यही कि जैसे हम मायके में जाते हैं और अपनी दादी नानी माँ बताती है कि ससुराल में शांति से कैसे रहना, सबकी सेवा कैसे करना, खुद अपने अपने लिए तो कोई भी जीता है, सबके लिए कैसे जीना और आत्म परीक्षण करना, और इसके लिए जैसा टाइम मिले वैसे मेडिटेशन करना, क्योंकि मैं आज लास्ट टाइम में सीख के गई थी मेडिटेशन करने का, और दीदी मैं बहुत उसमें समाधानी हूँ मेडिटेशन करके, क्योंकि मैं रेमोटोलॉजिस्ट अर्थशास्त्री पेशेंट भी हूँ, कि मुझे अपनी खुद की साड़ी की पीन, खुद का कुछ काम भी करना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जो सेंटर से ज्वाइन होने के बाद मुझे अपना खुद का काम भी आने लगा, और जब से मुझे सेंटर पे तो जाती हूँ लेकिन यहाँ आने की बहुत देर रही थी। मैं दीदी को हमेशा पूछती हूँ, दीदी वुमन स्विंग कब है, दीदी वुमन स्विंग कब है, दीदी अभी नहीं यहाँ पे, कोमल दीदी या निर्मला दीदी बोलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, मम्मी नहीं है लेकिन यहाँ से जाते जाते ऐसा लगता है जैसे कल मेरा मायका छूट रहा है। और मैं ऐसा सबको बोलना चाहती हूँ कि हम मायके में जाने को कैसे उत्सुक रहते हैं और मायके से कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेके आते हैं, वैसे यहाँ से जो भी जाएगा सब पॉजिटिव लेके जाएगा तो अपने जिंदगी संवर जाएगी और अपने बच्चे अपने परिवार के लिए भी वक्त दे सकते हैं और उनमें कैसे अपने को एक करने का सीख सकते हैं। अभी जो 8 मार्च को प्रोग्राम हुआ था, जैसे मैंने उनको बोला था, उन्होंने पूछा था तो सेंटर से ज्वाइन किया, तो मेरे जो भी मुझे वहाँ पे फर्स्ट रनर अप अवार्ड भी मिला, जो महाराष्ट्र पतसंस्था फेडरेशन से कोऑपरेटिव लॉ जो है 1960 का, उसपे वो पूरा पेपर था और उसपे वो पूरा वो स्पर्धा जो थी उसपे ही थी कॉम्पिटिशन। तो उसका मुझे एक महीने मेरे सत्कार होते रहे हमारे बैंक में जहाँ पे मैं सर्विस करती हूँ, स्कूल है वहाँ पे, मेरी सब हमारे डायरेक्टर प्रेसिडेंट सब ने ये किया। तो जो महीना भर मेरे सत्कार चले वहाँ पे, वो उसका वीडियो बनाया था और मेरी देवरानी औरंगाबाद से, तो उन्होंने उस वीडियो वो वीडियो का गाना अपने ओम शांति का जो सॉन्ग है ये मत कहो खुदा से उस पे बनाया था, और वो वीडियो दीदी ने अपने माउंट आबू के इस पे ग्रुप पे भी डाला था। तो आज भी मैं 2 दिन से जो भी सीख रही हूँ इससे यही चाहूंगी कि मैं सेंटर में जाना बंद नहीं करूंगी, कि मुझे जब भी टाइम मिले, थोड़ा सा बीच बीच में मराठी आती है क्योंकि महाराष्ट्र से हुई, हिंदी बोलने की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो वही बोलना चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ यहाँ आके, और यहाँ से जाते वक्त मुझे रोना आता है लेकिन यहाँ पे आने को बहुत अच्छा लगता है। सब दीदियाँ जो बातें करती हो सुनने को, सुनना ही नहीं सिर्फ, वो उसका आचरण कैसा हो, वो मैं अपनी जिंदगी में कैसा उसका इम्प्लीमेंट करूँ, इसकी मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ। और उसकी वजह से जो एम्प्लॉयज है वो भी मुझे लास्ट टाइम बोले, मैडम 20% आपके स्वभाव में फर्क आ गया है ना, आपका नेचर, अभी हर साल जाओ तो 100% एक बार होगा, ऐसे बोल रहे थे मुझको। तो मैं यहाँ से खुश हूँ और अभी ए टाइम में जो भी अपना विषय था सशक्त महिलाएं, तो यहाँ आके हम सशक्त बन रहे हैं, पूरे बने नहीं है, लेकिन अभी हम और लोगों को जो सशक्त बनने का यहाँ से जो सीखे जाएंगे बोलेंगे, जब हम पूरी तरह से सशक्त महिला बनेंगे और जब हम विश्व परिवर्तन के कुछ जैसा बोलते खारीचा वाटा उचलने मराठीत म्हणतात तेवढा आम्ही काहीतरी करू शकू असं मला वाटतं. थँक्यू. ओम शांती.
तो बहुत अच्छा, यहाँ आते हैं तो जरूर हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेकर के ही जाते हैं. जैसे कहा आपने, मुझे माइका लगता है, तो जरूर ये माइका ही है, क्योंकि भगवान हमारे मात पिता हैं और हम भगवान के घर में आए, माना अपने घर में आए हैं. आप सबको भी लगा हम माइके में आए हैं? और जरूर जैसे आपने संकल्प किया और करके दिखाया, इतना परिवर्तन, एकदम 100% हम चेंज हो जाएंगे वो तो इतना जल्दी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर 10% भी हम चेंज हो गए यहाँ आने के बाद, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ हम आबू आए, कॉन्फ्रेंस में आए, अपने पिता के घर में आए, वो आने की सफलता है. तो कुछ ना कुछ जरूर अपने अंदर वो परिवर्तन दिखाई दे. अभी नेक्स्ट कौन सुनाएंगे? हाँ आइए, जिनको सुनाना है वो आगे आकर बैठ सकते हैं. और कोशिश करें 3 से 5 मिनट के बीच में सुनाएं, बहुत लंबा नहीं सुनाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले अपने अनुभव सुनाने का.
हेलो. ओम शांति. मैं और मेरे साथ दो टीचर, हम पोरबंदर आर्य कन्या गुरुकुल से आ रहे हैं गुजरात. लीना बेन और रीता बेन से के साथ हम 2003 से जुड़े हुए हैं, मतलब कि इस संस्था के साथ. जब मेरा तब मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था और इनकी डेथ हो गई थी अचानक, और उस समय से मुझे निकालने के लिए ये लीना बेन और गीता बेन का बहुत बड़ा सहयोग है. वैसे मैं प्रिंसिपल हूँ पोरबंदर आर्य कन्या स्कूल की, रिटायर भी हो गई हूँ, तब से मैं आ रही हूँ. इनकी पहले भी मैंने एक सेमिनार भी नीचे एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन का 7 या शायद 8 में भरा था. मैं हमारी मतलब ब्रह्म समाज का महिला मंडल भी चलाती हूँ, तो इसमें लीना बेन और गीता बेन का बहुत सहयोग रहता है. जब भी जरूरत है महिलाओं को कोई प्रॉब्लम, महिलाओं का कोई मेरे जैसे कोई प्रश्न होता है, तो उसमें उसके लिए मैं जब जब गीता बेन को, अभी गीता बेन थोड़ी इस तरह हो गई है तो लीना बेन, वो सब आ जाती है और समूह में सबको इतनी अच्छी तरह से समझाती है ताकि सबके मन में इस शांति का अनुभव होता है, नहीं तो इनमें से निकलना बहुत कठिन हो जाता है. तो ये पहले इन दोनों दीदियों का मैं हम ऋण स्वीकार करते हैं. हमारी स्कूल भी 1936 में जब बाबा ने यहाँ और हमारे श्रेष्ठ श्री नानजी भाई कालिदास मेहता, हाँ जी, तो हाँ, तो यहाँ पे ये तब से हम जहाँ पे आए आज 4 दिन हो गए, और 4 दिन में हमने सभी के मुंह पर जो शांति का हमारे हमको जो लगता है कि कहाँ हमें जरूरत है इस शांति का, जो हमारे में कमी है, कहाँ आप सबके मुंह का तेज किस तरह है, तो हमें हमारे में क्या कमी है वो हमें ढूंढने लगते हैं, और इसमें से हम निकाल के अपना जो भी उसमें मिला हम ले सके, मिला तो बहुत है पर हम क्या ले सके वो उसकी तलाश हम कर रहे हैं, और हमने हमें बहुत लिया भी है लेकिन हमारे जीवन में उसे चरितार्थ करने के लिए प्रयत्न करेंगे. ओम शांति.
ओम शांति दीदी. मेरा नाम डॉक्टर अनिल बंसल है, मैं श्री गंगानगर से आया हूँ. यहाँ आने के बाद मुझे सबसे पहले मेरी आत्मा और मन पूरी तरह से पवित्र हो गया है दीदी, है ना, और मेरी नेगेटिव थॉट बिल्कुल खत्म हो गई हैं, और मैं 4 दिन से यहाँ अपनी जो है पॉजिटिविटी उसको इकट्ठा करे जा रहा हूं। और मैं ये सोचता हूं मैं पावर बैंक बन के इस पॉजिटिविटी को दूसरों में ट्रांसफर करूं जाके ये। और यहां की जो जितनी भी दादियां और बहनें मेरे को मिली और उनको देख के ऐसा लगा जैसे वास्तव में अगर सतयुग है तो वो ज्ञान सरोवर में ही है। एक बार क्लैपिंग हो जाए। दीदी यहाँ का खाना बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट था जो मना किया था, लेकिन मैं रह नहीं पाऊंगा कहे बिना। और सबसे अच्छी बात शुद्ध और स्वादिष्ट खाना और सब यहाँ मिलकर एक साथ बैठ के मुस्कुराते हुए खाना खाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ। और नहीं तो क्या होता है दीदी, घर पे अपन बैठते हैं ना तो मोबाइल 10 बार देखते हैं खाना खाते हुए भी, है ना। लेकिन यहाँ मोबाइल उठाने का मन ही नहीं किया दीदी कभी, मोबाइल भी ऐसे देखते थे यार क्यों बजाए बजा क्यों। ये बहुत ही अच्छा दीदी यहाँ का वातावरण। और अंत में दीदी मैं यही कहूंगा कि एक तो मेरे जो कुलीग हैं, स्टाफ है और है, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा दीदी। ठीक है, हाँ। और मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, सूरज भाई जी का मैं आज देख रहा था और आप का भी मैं सुनता रहता यहाँ सुना, तो उनसे ये लगा कि किसी भी चीज को आपको गुस्सा नहीं करना है। चाहे मेरे सामने 10 फाइलें आ गई तो उस पर साइन करने हैं तो कोई बात नहीं, हाँ ओके हो जाएगा। है ना, तो मैं सबके लिए कहूंगा कि सभी लोगों को शांति चाहिए, सभी लोगों को शांति चाहिए। तो भटको चाहे किधर भी, शांति मिलेगी इधर ही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
तो ये बहुत ही बड़ा संकल्प है कि चाहे कितना भी काम का बोझ आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन हम गुस्सा नहीं करेंगे, खुद भी शांत रहेंगे और सबको भी शांति देंगे। तो ऐसा कोई ना कोई संकल्प अपने लिए जरूर करना। हर एक को अपनी कमी पता होती है कि मेरी क्या कमी है, हम किससे परेशान रहते हैं। तो वही कि कैसे हम ज्ञान से, जो ज्ञान हमने यहाँ सीखा, उससे अपनी कमी को दूर कर पाएंगे। ठीक है, अभी कौन सुनाएगा?
आदरणीय सम्मानित मंच, आप सबको ओम शांति। मेरा नाम निर्मला पंडित है, मैं आई एम फ्रॉम नेपाल। मैंने यहाँ के कुन शब्द से उच्चारण करूँ और प्रशंसा करूँ, मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है। दीदी, आदरणीय दीदी जी ने, सब दीदी ने इतना इतना भरपूर किया, इतना भरपूर किया कि शायद ना आए तो कुछ भी नहीं मिलता था। इसलिए मैंने यहाँ पे जो पाया, जो सीखा, मैंने मेरा जीवन में भरपूर भरपूर यूज करूंगी। मैंने यहाँ से सच में दीदी, सच में मैं प्यार ही प्यार लेकर जाऊंगी, जा रही हूँ कल से। और साइलेंट ये मेरा 2 प्रण है, मैं ज्यादा से ज्यादा साइलेंट में रहूंगी। और मैं सबको, ओ मेरे आगे वाला मुझे जैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मैं स्माइल के साथ उसको प्यार बांटूंगी। मेरा यही संकल्प है। आदरणीय मुझे नेपाल से लाने के लिए लक्ष्मी दीदी, गंगा दीदी जी और नवराज भाई जी और निर्मला बहन जी, सबको धन्यवाद करती हूँ। और ये प्रोग्राम में मेरे लिए सारा सारा, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब इतना ज्यादा है लेकिन कोई शब्द ही नहीं है। मैं भरपूर होकर जा रही हूँ और प्रण करती हूँ फिर भी आऊंगी। ओम शांति।
कोई हमसे कैसे भी बोले हाँ, लेकिन हम प्यार से बोलेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ऐसे होता है कि किसी ने जरा भी जोर से हमसे बात की तो तुरंत हम भी उसी जोश में आ जाते हैं। ऐसे कहते हैं लव बिगेट्स लव, आप प्यार देंगे तो अपने आप प्यार मिलेगा। और अगर हमने गुस्से से बोला तो सामने वाला भी कैसे बोलेगा, गुस्से से ही बोलेगा, तो हम ट्रांसफर करते हैं उसको। तो यहाँ से हम प्रतिज्ञा करें कि हम हमेशा प्यार से ही बोलेंगे, तो फिर सामने वाला भी फिर प्यार से ही बात करेगा। तो ये बहुत अच्छा है कि आपने ये संकल्प लिया है। अभी नेक्स्ट,
ओम शांति। कोविड से ऐसे दो चार इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ट्रॉमाटाइज फील करती थी या लो फील करती थी, तो मैं जैसे अस्मिता दीदी के गाने सुनती थी, दामिनी दीदी के गाने सुनती थी, तो थोड़ा हील फील होता था क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी आती थी। फिर धीरे धीरे मैं सेंटर से जुड़ गई और राजयोग का कोर्स किया, और उसके बाद थोड़ी चीजें पता चली। पर वो जैसे आप बताते थे ना कि हम याद करते हैं या याद आते हैं बाबा, तो वैसे होता था कि हम स्वाद के लिए, मैं उतने देर तक हील के लिए मैं गाने सुनती थी, वीडियोस देखती थी और फिर छूट जाता था। पर जब से यहाँ आने के बाद अमृत वेला में जब मेडिटेशन कर रही हूँ, तो उसका ज्ञान हुआ कि ये कितना जरूरी है डेली लाइफ में। और मेन चीज जैसे आपने बोला कि सबको पता रहती है अपनी खामियां, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेप वही है कि अपने एक्सेप्टेंस आना जरूरी है। तो वो चीज मैंने बहुत रियलाइज की कि मुझ में एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे प्रेम से बात करनी चाहिए, शांति से बात करनी चाहिए। तो वो धीरे धीरे शुरुआत हो रही है ऐसा लग रहा है। पर ये अमृत वेला की जो बात है कि सुबह उठ के हमें वो मेडिटेट, योग और वो पॉजिटिव एनर्जी चार्ज करनी चाहिए खुद के लिए, तो वो लाइफ में कितना जरूरी है और वो डेली बेसिस में होना कितना जरूरी है, वो ज्यादा समझ में आया यहाँ पे आके। तो वो वही चीज है कि पहली चीज एक्सेप्टेंस, उसके मद्देनजर रखते हुए पॉजिटिव चीजों का विचार करना है, और अमृत वेला पे उठ के डिसिप्लिन रहना है।
अमृत वेला उठने का संकल्प बहुत बड़ा है। आप सबने यहाँ कितने लोगों ने अमृत वेला किया रोज? अच्छा, काफी लोगों ने किया। आप आगे भी करेंगे घर में जाके? जो समझते हैं घर में जाकर के भी हम करेंगे वो हाथ उठाएं, क्योंकि घर में भी करेंगे। हालांकि घर का माहौल थोड़ा अलग होता है, यहाँ तो आपको काफी हेल्प है, एटमॉस्फेयर की, सारा ग्रुप है, ग्रुप सपोर्ट होता है। घर में तो आप अकेले होंगे, हो सकता है और सब तो अमृत वेला नहीं जानते, कैसे योग करना है नहीं जानते, लेकिन हम करेंगे तो हमारे घर के एटमॉस्फेयर को हम चार्ज करेंगे, तो उसका बेनिफिट हमें भी मिलेगा और हमारी फैमिली को भी मिलेगा। बस थोड़ा सा हमें डिटरमाइंड रहना पड़ेगा। वो समय सबसे प्यारा नींद का भी टाइम होता है। सबसे अच्छी नींद कब आती है? सवेरे सवेरे। और भगवान से भाग्य लेने का समय भी कौन सा है? तो वो फिर हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि अभी हमें नींद को जीतना है या अमृत वेले का लाभ लेना है। ठीक है, अभी हाँ नेक्स्ट कौन आ रहे?
ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम कोपिला अधिकारी है, मैं नेपाल से हूँ। मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और योग की प्रैक्टिस भी करती हूँ। यहाँ आके मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, हम जब भी सोचते हैं कि हमारा दुख का कारण बहुत ही हमारे पास, पर अभी जो ये शरीर, एक पांचा भौतिक शरीर जो है, वो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन बोलते हैं। हमारे सब कर्म का, धर्म का, सेवा का साधन शरीर है, पर दुख का साधन हम शरीर मानने लगे तो वो भारी पड़ता है। तभी जब दीदी ने राजयोग में क्लास में बताया कि ये तो एक साधन है, जब हम अपने आप को एक आत्मा के रूप में जब स्वीकारती है, जिसके गुण है, प्रेम है, सुख है, शांति है, पवित्रता है, ये सब सद्गुणी जो आत्मा है, तब हमारा दुख का बोझ हल्का होने लगता है। ये सीखने का मौका मिला, वो ज्ञान था पर व्यवहारिक रूप में कैसे उसको अवलंबन करें, उसका ज्ञान, वो सीखने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ दीदी का। और दूसरे में जो यहाँ महिला सशक्तिकरण के विषय में जितने भी बात हुआ, अभी हम देखते हैं कि कभी तो लगता है कि वर्किंग वुमन होना भी एक बर्डन है, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू बी अ वर्किंग मदर, जितने भी क्लास हुआ संस्कार का, अपने बच्चों को टाइम देना है, अच्छे खाने पका के खिलाना है, उनके साथ बैठना है, उसके बाद हमें अपना काम भी करना है, तो इन सब को कैसे बैलेंस करना, उसके लिए सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को पहचानना और अपने अंदर खुशी और प्रेम को भरना। जब मेरा खुशी और प्रेम का भंडार भरा रहता है तब भी शायद मैं अपने बच्चों को और परिवार वालों को भी वो प्रेम और खुशी दे सकती हूँ। ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, उसको व्यवहार में लाने के लिए जो प्रेरणा मिलता है ना, वो यहाँ आके दीदी लोग ने जो क्लास लिया उन सबको सुनने के बाद बहुत उत्साह हो रही है कि नाउ आई कैन डू दैट, वो कॉन्फिडेंस यहाँ से लेके मैं जा रही हूँ। और दीदी ने बोला यहाँ के बारे में ज्यादा मत बोलना, बट जब जब मैं यहाँ के सारे भौतिक चीज भी देखती हूँ, यहाँ का व्यवस्थापन देखती हूँ, और कल भाई जी ने क्लास में बताया बाबा जी का संपूर्ण व्यवस्थापन प्रशासन से लेके सब दादी जी देखते थे और अभी भी हम देख रहे हैं, सब दीदी जी हमें ज्ञान दे रहे, तो अब ये बहुत अंदर से आ रहा है कि व्हेन फीमेल वुमन्स वांट, व्हेन अ मदर वांट टू डू समथिंग बेस्ट, दे कैन डू इट टू देयर मैक्सिमम लेवल। एंड हम स्वर्ग बना सकते हैं धरती में, स्वर्ग बना सकते हैं अपने घर को, अपने वर्क प्लेस को। हम अपने वर्क प्लेस लीडिंग कर रहे हैं तो अभी भी पता है, हमारे यहाँ भी बोलते हैं कि जहाँ जहाँ फीमेल लीडिंग रोल है वहाँ का व्यवस्थापन अच्छा है, वहाँ का स्टाफ का सेटिस्फेक्शन रेट और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन रेट हाई है। पर अभी हम बहुत बहुत उत्साह मिल रहा है कि यहाँ का इतना सारा, ये इट्स अ बिग सिटी लाइक अ होम, एक घर के जैसे सब कुछ अपने अपने जगह पे अच्छा है, कोई भी चीज देखो द बेस्ट है, उनके ऊपर सब गुण है। तो हमें भी ऐसे ही करने के लिए बहुत एक दीदी ने बोला जैसा व्यू बोएंगे ऐसा ही हम बनेंगे, ऐसा ही एक उत्साह हमारे अंदर भी आया। संकल्प के लिए मेरा यही संकल्प रहेगा कि मैं जितने भी अपने कर्म करूंगी, सेवा करूंगी, वो प्रेम भाव से और अपने आप में प्रेम भाव से करती हूँ, और मैं जो भी करूंगी उसी पे मेरा ध्यान रहेगा। जैसे राजयोग में दीदी ने ध्यान सिखाते सिखाते बोला कि हम बोलते हैं कि कर्म योग के अभ्यास करते हैं हम, एक्चुअली हम राजयोग भक्ति योग तो उतना ज्यादा नहीं कर पाते, पर कर्म योग करते हैं, तो कर्म योग में ध्यान का मिलन कराने के लिए भी यहाँ से ज्ञान मिला। और बेस्ट थिंग व्हाट आई गॉट फ्रॉम योर दीदी ने कल क्लास में बोला, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव तो करते थे पर ये पता नहीं था कि हाउ टू फॉरगेट दैट, जो भी फॉरगिव करते थे वो भी दिमाग में रहते था। और दीदी ने दूसरा भी बताया, यादों को और जो विचार है, थॉट्स है, उनको हम दिमाग पे रखते रहे तो वो भी एक दिन भार बन जाता है, इसीलिए उसको भी रिलीज करना है। जैसे हम घर में सामान ज्यादा इकट्ठा करें तो उन्हीं को संभालते संभालते हमारा टाइम जाता है, वैसे ही हमारा थॉट्स को हम दिमाग में मन में रखते रहे तो वो भी एक दिन भार होता है। ये दोनों संकल्प करते मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फाइनली आई वांट टू से, जिसके अंदर जो होता है वो ही देते हैं, हमारे सामने वाले क्या देते हैं वो मीनिंग नहीं रखता, हमारे अंदर क्या है उसके हिसाब से हमें उन लोगों का आंसर देना है। इतने ही कहते, सब ये सब जो कुछ हैपन हुआ, नेपाल से माउंट आबू तक आना, ये सब ये बहुत अच्छा मौका रहा इन सब के लिए, बाबा जी को, दादी जी को, दीदी जी को, और हमारे निर्मला बहन जी है, नवराज भाई जी है, सुशीला दीदी है, उन सबको बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सबको धन्यवाद। ओम शांति।
तो जैसे आप अपने भाव बता रहे थे, तो जहाँ भी महिलाएं हैं और अगर वो कार्य कर रही हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कार्य में कोई कम है, वो भी अच्छे से अच्छा उसे करके दिखा पाती हैं, और भगवान ने एक सैंपल क्रिएट किया है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि जैसे हमारे यहाँ तो कह दिया गया कि नारी नरक का द्वार है, लेकिन भगवान ने सिद्ध करके बता दिया कि नारी ही स्वर्ग का द्वार है और वो स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बन सकती है। तो हम सब भी यही यहाँ से थॉट लेकर के जाएं कि हम भी भगवान के इस कार्य में बिल्कुल सहयोगी बन करके जो स्वर्ग के गेट शिव बाबा खोलने के लिए आए हैं, हम भी वो गेट खोलने के कार्य में पूरा राइट हैंड बनकर कार्य करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट कौन है?
ओम शांति। शरीर का नाम है जिगीशा पटेल। मेरे साथ और तीन बहनें आई हैं। मैं गुजरात अहमदाबाद से, महादेव नगर सेंटर से, चंद्रिका दीदी के सेंटर से आए हैं। मीना बहन, नीता बहन प्लीज आप खड़े हो जाइए, और जानी बहन। हम चारों प्रिंसिपल्स हैं स्कूल के। हम दो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और ये दो वर्किंग प्रिंसिपल हैं। ये लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। मैं सेंटर पर बार बार जाती हूँ, ट्वाइस इन अ वीक, थर्सडे और संडे को। पर पहले तो मैं बाबा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी सारी महिला के इतने सारे सॉल्स में हमें चूज किया, ये चारों आत्माओं को। तो बहुत अच्छा लगा हमको। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि अब पूरे विश्व में परिवर्तन चल रहा है, और इस परिवर्तन की नींव को महिला, सशक्त महिला, तो ये विश्व परिवर्तन की नींव सशक्त महिला, बहुत अच्छा टॉपिक के साथ आज हम लोग चार दिन से ज्ञान सरोवर में ज्ञान ले रहे हैं। ये पूरा सरोवर ज्ञान से भरा हुआ ऐसा हमको लगा। हर एक मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानती हूँ। और ज्ञान सरोवर में आके हमारे जीवन का दृष्टिकोण भी पूरा बदल गया। एक नए दृष्टिकोण के साथ हम लोग कल जाएंगे, सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक। यहाँ जो एटमोस्फियर मिला, हमको जो एनर्जी मिली है, उसने बताया बहन जी ने कि जाएंगे तो कल हमारा, परसों घर पर पहुँचेंगे, हमारा रूटीन चेंज हो जाएगा, कि हमारी सामाजिक जिम्मेवारी के साथ हमें ये सब करना है, तो ये थोड़ा मैनेज करेंगे हम लोग। यहाँ की सबके नाम में नहीं ले सकती अभी, तो सब दीदियाँ बहुत ज्ञान के साथ, हमको बहुत ज्ञान पीरसा है इन लोगों ने। और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था। हमारे वेलकम सेशन से लेकर डिपार्चर तक हमको एक नई ऊर्जा मिली है यहाँ, और साथ साथ हमें स्वयं को पहचानने की एक जानकारी मिली है कि समाज की जिम्मेवारी के साथ हमें हमको नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने आप को पहले जानना चाहिए। और यहाँ बाबा को प्रार्थना करते हैं कि बार बार ये जगह पे हमें बुलाए, और ये ऐसी ऊर्जा हमें भरे और जाके सबको हम दे दे। थैंक यू। ओम शांति।
जरूर ये आप सबका घर है, क्योंकि भगवान का घर हम सबका घर है। तो आप तो हर साल आए हम ऐसा कहेंगे, लेकिन अपने साथ साथ फिर औरों को भी तैयार करके लेकर के आए। केवल खुद ही नहीं आना है, लेकिन हमारे साथ जो भी हमारे और साथी हैं, जैसे कहा बहन ने कि हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, तो निश्चित है आध्यात्मिकता हमारे सोचने के तरीके को बिल्कुल बदल देती है। ये फर्क हम अपने जीवन में खुद भी महसूस करते हैं। बस ये है कि हम वर्किंग है, काम करते हैं, परिवार भी संभालते हैं, और साथ साथ में जो स्पिरिचुअलिटी हमने सीखी है उसका भी समावेश करते हुए अपने लाइफ में बैलेंस करके हम चलें। अभी कौन आएंगे?
ओम शांति। मेरा नाम साइली भोसले है। मैं अनीता दीदी और वैजयंती माता के साथ सोलापुर से टिम्बोरनी भाग से आई हूँ। तो एक्सपीरियंस बताने से पहले, मेरी जो सासू माँ जी है वो रेगुलरली सेंटर जाया करती है। अनुभव के दौर पर उन्हीं के अनुभव मैंने सुने हैं। तो जब से शादी हुई है तब से पता है कि पॉजिटिव थिंकिंग का इम्पैक्ट कैसा होता है। वो हर समय बाबा को याद करती है, तो देख के मुझे भी उस बात का अट्रैक्शन होने लगा था कि हाँ इस तरह से पीसफुली जिया जा सकता है। लेकिन अभी तक वो रेगुलरली एक्सेप्टेंस कहते हैं उस तरह से नहीं आया था। यहाँ मुझे उन्होंने भेजा, उसके लिए सबसे पहले उनको थैंक यू। और यहाँ आने से पहले जितने भी सवाल मन में थे, जितनी कंप्लेंट्स थी खुद की पर्सनालिटी के बारे में कि क्यों मैं इतना मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, या फिर कुछ बातें मैं इतनी एग्रेसिवली क्यों पुट करती हूँ, सिचुएशन होने के बाद मुझे क्यों थिंकिंग आती है कि मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, इसका सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ आके मुझे मिला कि किसी से भी किसी भी प्रकार की अपेक्षा मुझे नहीं करनी है। जो कुछ भी परिवर्तन करना है मुझे अपने आप में ही करना है, बहुत पॉजिटिवली, और मैं वो करूँगी। क्योंकि मैं खुद को पूछने के बाद जब हम अपने आप से पूछते हैं क्या हमें सच में चेंज होना है, तो मुझसे मन की आवाज़ आती है कि हाँ मुझे चेंज होना है, मुझे पीसफुल हैप्पी लाइफ चाहिए। जो भी गिले शिकवे हैं, जितने भी रिलेशंस में किसी के साथ भी ग्रजेस हैं, वो 100% ट्राई करूँगी कि छोड़ दूँ और अच्छे से सबके साथ रिलेशंस रखूँ। और यहाँ का जो वातावरण है इतना केयरिंग, बहुत ही एफर्टलेसली हैप्पी पीसफुल रहा जा सकता है। खुद के बारे में हाँ मैं अब थक गई हूँ या फिर मेरी कैपेसिटी इतनी ही है, ऐसे किसी भी बाउंड्रीज में खुद को न बांधते हुए आपको अब सबको देख के पता चलता है कि आप इतने एज के बाद कभी आपने किसी भी प्रकार की बाउंड्रीज में खुद को नहीं बांधा। तो इतनी एक सोल में पावर होती है, तो हम भी उस तरह से अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं। तो कभी नहीं कहूंगी कि मैं थक गई हूँ या फिर मुझसे नहीं होगा, मुझसे होगा, जरूर होगा, बहुत अच्छा होगा। इतने सारे पॉजिटिव थॉट्स यहाँ पे आने के बाद मिले, ये जो स्टेज पे आके बोलने का इंस्पिरेशन है या फिर खुद का अनुभव शेयर करने की बात है, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि डर लगता है बात करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। ये जो आपने 4 दिन सिखाया वो पूरा लाइफ में हर घड़ी अपने आप में लाने का तहे दिल से प्रयास करूंगी, और अपना और सब मेरे साथ जितना हो सके उतना समाज में भी हैप्पीनेस बढ़ाने का प्रयास करूंगी। थैंक यू दीदी।
तो यहाँ आने के बाद सबको देख के इतनी पावर आ गई कि सामने आके अपना अनुभव तो सुना सके। हाँ अच्छा, आइए अब नेक्स्ट कौन आ रहे हैं।
ओम शांति। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी बुद्धि में ये विचार डाला कि मैं यहाँ पर आऊं और इस संस्था से जुड़ूं। सारी दीदियों को सादर प्रणाम। और मधु दीदी का धन्यवाद करती हूँ, मैं आगरा से आई हूँ और मेरा नाम ज्योति है, कि उन्होंने भी हमको यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर जो अनुभव है वो ऐसा है जो बहुत ज्यादा शब्दों में बताना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने, मुझे लगता है मैंने यहाँ सीखी हैं। हम लोग बचपन से भक्ति मार्ग को देखते आए हैं, तो रीति रिवाज और आरती पूजा ये सब हमने बचपन से किया है, अपने घर में भी अपने मदर को करते हुए देखा। लेकिन कुछ कंफ्यूजन रहता था, या कभी कभी ये कंफ्यूजन रहता था, जैसे हमने डेज के हिसाब से भी ईश्वर के नाम डिवाइड किए हुए हैं कि आज मंगलवार है तो अगर आज हनुमान जी की पूजा नहीं की तो कहीं वो नाराज ही नहीं हो जाए, इस तरह का एक भ्रम माइंड में रहता था। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने राजयोग के सेशंस किए तो वो एक डायरेक्ट लिंक क्या है वो समझ में आया, एक परिचय जिसे कहना चाहिए। आज हम लोगों ने पीस पार्क का भी राउंड लगाया था तो वहां एक चार्ट बना था जिसमें उन्होंने शो किया कि एक शिष्य है वो अपनी गुरु की पूजा कर रहा है, फिर गुरु जो है वो हनुमान जी के भक्त हैं तो वो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, फिर हनुमान जी राम जी के भक्त हैं तो वो राम जी की पूजा कर रहे हैं, और राम जी शिव जी के भक्त हैं तो वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ नीचे से शुरू करते हैं तो वो मीडिएटर्स बहुत ज्यादा हैं तो शायद उतना हमको वो हम लिंक नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ ये समझ में आया कि वो डायरेक्ट चैनल यूज करना है, आपको सीधा ईश्वर को याद करना है, बीच में बहुत मीडिएटर्स डालने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज जो मैंने यहाँ पे आज सुबह सविता दीदी ने हमको सेशन में बताया था कि भगवान को या ईश्वर को उनकी उनको याद करना है या याद आती है या याद सताती है, तो याद आनी चाहिए क्योंकि जब हम याद करते हैं तो फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ या कुछ डिमांड आ जाती है। तो एक ये चीज सीखी कि आपको ईश्वर से मांगना कुछ भी नहीं है, आप बस उन्हें याद करें तो वो स्वतः आपको सब कुछ देते हैं। और एक और चीज जो मैंने यहाँ पे अच्छी से समझी, बहुत सारे लोगों को हमने स्टेज पे सशक्त महिला के ऊपर बोलते हुए सुना, सशक्त महिला का जो एक डेफिनेशन था वो शायद उतना क्लियर नहीं था। बहुत सारे लोग आए, कितने सारे, एक वो आई थी जो मिसेज इंडिया इंटरनेशनल थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए तो वो समझ में आया कि सशक्त का मतलब है कि आपको घर में रहते हुए गृहस्थी में रहते हुए अपने फैमिली को इस तरह से हैंडल करना है कि वो एक गृहस्थ आश्रम बन जाए, जैसे पहले हम बोलते थे गृहस्थ आश्रम है, नहीं तो सशक्त का एक अलग ही मीनिंग हम लोगों के दिमाग में था कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं तो आप सशक्त हैं, तो वो एक मिसकंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा हट हो गया, चेंज हो गया है। और दूसरा, यहाँ के जो वातावरण है वहाँ पे एक अच्छा सा पॉजिटिव वाइब्रेशन है, एक तो प्रकृति की गोद में है हम तो बहुत अच्छा लगा। एक और नई चीज जो मैंने सीखी यहाँ पे, अभी तक हम ध्यान करते वक्त आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, जनरली हम आंखें बंद कर लेते हैं, जो आज सुबह दीदी ने हमको प्रैक्टिस भी कराया और सिखाया भी कि आपको आंखें खोल के योग करना है। इसका मतलब जो मैंने समझा, अभी पता नहीं सही है कि नहीं, कि आप अपने इंद्रियों के ऊपर अपना कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी आंखें खुली हैं लेकिन फिर भी आपको इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा है, कान खुले हैं लेकिन आपका डायरेक्ट कनेक्शन अगर परमात्मा से होता है तो वो इंद्रियों पे आपका वश हो जाएगा, आई थिंक ऐसा है, दीदी शायद मुझे बता सकती है। और बाकी एक और चीज जो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से अनुभव की, सुबह में उस सब्जी काटने की सेवा करने का मौका मिला तो ईश्वर के नाम पे बैठ के सब सहयोग से और सेवा के भाव से जब काम करते हैं तो उसकी पावर वो फील की, वो महसूस किया कि इकट्ठे बैठ के काम करने में काम का बोझ नहीं महसूस हुआ, बड़ा प्रसन्नता सी फील हुई। जब सेवा करके पहुंचते हैं रूम पे तो बहुत अच्छा सा फील होता है, जैसे कुछ बहुत ही महान काम करके हम आए हैं, जबकि घर में काम करना होता है तो लगता है थक रहे हैं, ये किसी तरह से टल जाए तो अच्छा है, अभी ना बना के बाद में बनाने को पड़ जाए तो अच्छा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे लगा कि ईश्वर का नाम आप लेते रहें और वो प्रसाद की तरह, भोग की तरह आपका खाना बनेगा। तो बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे आके सीखी। और लास्ट दीदी ने कहा कुछ दान करके जाना है, तो मैं अपनी कमी के हिसाब से व्यर्थ चिंतन को दान करूंगी, क्योंकि व्यर्थ चिंतन बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं तो हमारी एनर्जी उसमें बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती है, इमेजिनेशन में किसी की कोई बुराई दिमाग में आ गई और उसको हम इतना चिंतन कर लेते हैं, पता लगा खाना बना रहे हैं और किसी की कोई बात याद आ गई तो वो पूरी बात ही दिमाग में चल रही है, उधर खाना पक रहा है, तो वो वाइब्रेशन रॉन्ग जाएगी। ये हमने सीखा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक और चीज, यहां एक चीज जो मैंने महसूस की जो भक्ति मार्ग से अलग है कि दीदियां दे प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, जबकि भक्ति मार्ग में कहीं हम लोग इस चीज को मिस करते हैं कि जिन गुरु को, जिन लोगों को हम सुन रहे होते हैं वो हमसे बोलते हैं मोह माया त्याग दो, लेकिन वो खुद एक बड़े से सिंहासन पे बैठे होते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बात उनकी माननी है, जो वो कह रहे हैं या जो वो इन एक्शन शो कर रहे हैं। लेकिन यहां वो चीज बहुत डायरेक्टली आपको अप्रोच करती है, बिकॉज जितनी भी दीदियां हैं ये लोग जितना भी कुछ सिखाती हैं ये पहले उसको पूरी तरह से खुद प्रैक्टिस कर रही हैं, तो उसको सीखने में ज्यादा अच्छा महसूस होता है, उसको सीखने में थोड़ा आसानी महसूस होती है। थैंक यू, ओम शांति।
तो बहुत अच्छे आपने अपने अनुभव सुनाए, क्या सीखा आपने। तो जैसे आप कह रहे थे कि जब हम यहाँ मिलकर काम करते हैं और भगवान की याद में करते हैं तो कितनी खुशी होती है, थकते नहीं हैं। तो ऐसे ही जब आप अपने घर जाएंगे और भोजन बनाएंगे तो शिव बाबा को याद करके भोजन बनाइए, तो आपको बिल्कुल थकान नहीं होगी, खाना बनाने में भी बहुत मजा आएगा और खुश मन भी खुश हो जाएगा। तो अभी ये प्रयोग करके देखना कि पहले इधर जैसे बोला ना, पहले व्यर्थ की बातें चलती रहती हैं मन में और फिर हम खाना बना रहे हैं वो वाइब्रेशन हम भरते हैं, लेकिन अब खाना बनाते हुए बाबा को, शिव बाबा को याद करते हुए बनाएंगे तो कितना डिफरेंस लगता है। तो अभी नेक्स्ट,
ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम हार्दिक गेड़िया है, मैं राजकोट से हूँ, अवधपुरी रेखा दीदी के सेंटर से। मेरा अनुभव है तो मैं एक स्टोरी में बताना चाहती हूँ कि एक गांव था, गांव के उस पार नदी थी, गांव के बीचों बीच एक टेकरी थी, मतलब पर्वत था, उसकी टोच पर एक शिव जी का मंदिर था। अब जब गांव तो छोटा सा था तो नदी बहुत बड़ी थी, तो पूर आ गया, पानी का पूर आ गया, तो जो गांव के लोग थे उसको गांव खाली करके दूसरे गांव में जाने का कह दिया। तो एक था भैया, वो माने नहीं किसी की बात कि कुछ नहीं होता, मेरा भगवान बैठा है ना, मुझे कुछ नहीं करेगा, मैं नहीं डूबूंगा। फिर पानी आते आते टेकरी के जो स्टेप्स थे वहां तक आ गया, तो फिर भी सब जो नाव लेके आते थे उसको बचाने के, भाई अब गांव में तू अकेला ही है, सब चले गए हैं, तो तू भी आ जा, बच जाएगा, वरना डूब के मर जाएगा। फिर भी माना नहीं, मेरे भगवान बैठे हैं ना, मेरा शिव जी बैठे है ना, वो मुझे बचा लेगा। फिर ऊपर गए, पुजारी भी नीचे आ रहे थे मंदिर बंद करके, तो बोले भैया अब तो मैं भी जा रहा हूँ, पुजारी हूँ, फिर भी चल निकल मेरे साथ वरना डूब जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा शिव जी बैठा है ना। तो फिर ऐसे करके करके मंदिर तक गए, बोला भगवान अब आप कहाँ हो, सब लोग चले गए, मैंने किसी की बात मानी नहीं, अब मैं डूब जाऊंगा, आ जाओ बचाने। एक भैया आए नाव ले, तीन चार बार एक ही भैया आए नाव लेके, ठीक है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था कि भाई मुझे नहीं जाना, मेरा भगवान बैठा है ना, वो मुझे बचाएगा। ऐसे करके करके वो डूब गया और फिर ऊपर गया भगवान के पास। उसने वो गुस्सा हो गया कि भाई आप आए क्यों नहीं मुझे बचाने, चार लोग आए थे, चार बार एक व्यक्ति आया था मुझे बचाने, तो आप माने क्यों नहीं। तो भगवान ने बोला कि तू मुझे समझ नहीं सका, वो मैं ही था, तुझे बचाने आया था, तू समझ नहीं सका। फिर उसे अपनी गलती का रियलाइज हुआ, वैसा ही कुछ मेरा है एक्सपीरियंस। मेरी शादी हुई तो मेरे घर में मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड दोनों ओम शांति सेंटर पे जाते थे अवधपुरी पे, तो मुझे तो शादी से पहले कुछ ये पता ही नहीं था कि ओम शांति मतलब कुछ है ऐसा, तो पता नहीं है जिसको वो तो कुछ समझ ही नहीं सकेगा ना मतलब। तो मेरे हस्बैंड जो एंगेजमेंट के बाद मुझे मिलने आते थे, हम दोनों घूमने जाते थे, तो वो गाड़ी में मुरली चलाते थे। तो सॉरी थोड़ी फनी बात है पर मेरा जो है वो मैं बोल रही हूँ। तो वो मुरली चलाते थे और फिर फोन पे भी ना वॉलपेपर पे बाबा का फोटो रखते थे। तो मैंने कहा आप मोदी के इतने बड़े फैन हो? मुझे ब्रह्मा बाबा है वो मोदी जी से ही दिखते थे। मैंने कहा आप इतने बड़े मोदी के फैन हो भाई, भगवान का फोटो लगा लो, ये मोदी क्या कर देगा आपके घर में आके? फिर वो मुझे कुछ नहीं बोलते थे, तू रहने दे तुझे कुछ नहीं समझ में, पर मुझे समझाओ तो ये कौन है, ये मोदी की फोटो आपने रखी क्यों है? मैंने कहा आप पहले मुझे ये बताओ, और ये रोज आप सुनते हो, आप स्कूल में नहीं गए हो? मैंने कहा। तो उसने फिर बोला ये मुरली है और इसे रोज सुनना चाहिए। फिर भी मैं नहीं मानती थी। फिर मैं मेरी सासू माँ को बाहर लेके जाऊँ ना, तो कोई भी स्पीड ब्रेकर आए या फिर ट्रैफिक जाम हो तो वो बोल, घर से बाहर निकले ना तो वो बोलते चलो बाबा हमारे साथ, ऐसा बोलते हैं, डेली का रूटीन है अमृत वेले में। मैंने फिर मैं सासू माँ को तो कुछ बोल नहीं सकते, फिर जो भी भड़ास होती है वो हस्बैंड के ऊपर निकल जाती है। मैं मम्मी ये क्या बाबा बाबा लेके पूरा दिन वो करती है कि चलो बाबा साथ में, ये मोदी है मोदी को क्या है ऐसा करती, चलो बाबा साथ में, स्पीड ब्रेकर आए तो चलो बाबा ध्यान रखना। फिर एक दिन मैं दूध लेने जा रही थी, वहां पे एक ओम शांति से एक बहन निकली, उसने मुझे बोला कि आप, मेरे सासू का नाम नैना बहन है, आप नैना बहन के बेटे की वाइफ हो? मैंने कहा हाँ, आओ कभी सेंटर पे। फिर मैं गई सेंटर पे और सेंटर पे मैंने क्लास पूरी की, तब मुझे पता चला कि ये मोदी नहीं है, ये तो हम सबका बाप है, तब मुझे पता चला। और फिर वहां पे गई, पहले पूरा कोर्स किया मैंने और फिर मुझे पता चला। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दिन बोला कि अब पता चला ये मोदी है कि मोदी का बाप है? मैंने कहा मोदी का नहीं, हम सबका बाप है ये। तो फिर उसने कहा ठीक है अब तुझे समझ में आएगा? मैंने कहा हाँ। फिर वहां पे मैं जाती थी, रोज तो नहीं जाती थी पर गुरुवार के दिन जाती हूँ, बाबा की दृष्टि लेने जाती हूँ। फिर एक दिन रेखा दीदी ने ये यहाँ पे आने का बोला और यहाँ पे जब आना था तब अगले एक वीक पहले ही मैंने अपना थेरापिटिक वेलनेस सेंटर खोला फिजियोथेरापी का। और पहले ही दिन मैंने सबसे पहले बोलते हैं ना कि पूजा करनी है, कोई भी अच्छा काम करो, तो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बाबा का फोटो पहले चाहिए। पूरी जो मैंने शॉप रेंट पे रखी है सबसे पहले खिल्ली मरवाई और बाबा की मूर्ति पहले रखी, और बाद में जो भी कुछ था वो मैंने किया। तो तब भी मेरे मुझे बार बार मैं सेंटर पे जाती हूँ ना तो भी मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि क्यों तूने ना मोदी की फोटो क्यों पहले लगवाई है? मैंने कहा अब बस करो, मुझे नहीं पता था इसलिए मैं ऐसा बोल रही थी। तो कहे ठीक है कोई बात नहीं। फिर यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ आने का मौका मिला एक वीक पहले ही मैंने जो मैं बोल रही हूँ थेरापिटिक वेलनेस सेंटर ओपन किया। पहले ही दिन 40 लोग आए, मैंने फ्री में थेरापी दी उसको। और फिर यहाँ पे आना तय हुआ तो मुझे एक डर था कि मैं क्या करूँगी, अब ये सेंटर हजी मतलब ओपन ही किया है तो फिर सब कस्टमर जो है पेशेंट जो है चले जाएंगे तो इतने दिन में क्या करूँगी ऐसा। फिर मेरी सासू माँ है उसने बोला कि इसके ऊपर भरोसा रख और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आके पहला मैंने बाबा से जो कमरे में गए बाबा से यही बात की कि बाबा ये कुछ होगा तो नहीं ना, तुम मेरे पार्टनर में हो, ध्यान रखना। फिर कॉल आते हैं, अभी भी आते हैं कि मैडम आप कब आ रही हो, तो मुझे ये पहला अनुभव हुआ कि वो साथ है। कुछ नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, जो भी करना है वो करेगा, और गुस्सा भी बहुत आ जाता है। तो अब यहाँ से ये सीख के जाओगी कि किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, सबके साथ शांति रखनी है। ओम शांति।
तो अपने दिल की सच्ची बात है आपने सबके सामने रखी, और कैसे जब सच्ची दिल होती है तो भगवान हमारे मन की सब मुरादें पूरी कर देता है और हमारा अपना बन जाता है। और किसी का सुनाना बाकी है? अच्छा, और भी कोई सुनाना चाहते हैं? क्योंकि एक या दो लास्ट सुना सकते हैं, फिर 10 बचने वाला है। ठीक है, दो जने सुनाएं।
ओम शांति। मैं लातूर सेंटर से आया हूँ, सुषमा दीदी के साथ आया हूँ, उनके सहकार्य से यहाँ पर आया हूँ, और पहली बार आया हूँ यहाँ पर। इसे मुझे इसका कुछ ज्ञान नहीं था, इसकी चीज का मतलब यहाँ पे क्यों आऊँ मुझे, लेकिन बहुत समझ सके इसका मतलब आने का कारण है। तो मेरे मिसेस का जहाँ पे स्पीच था यहाँ पर, जो मिसेस इंडिया है, उसी कारण मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ पर। लेकिन मेरा जो कारण अलग ही हुआ मुझे, मतलब मेरा विषय भी ऐसा हो गया कि मैं 5 साल से माँ से बात नहीं करता हूँ, मैं मेरे खुद की माँ से 5 साल से मैं बहुत ही मतलब 5 साल से मैं डिप्रेशन में हूँ। लेकिन उस और मेरी मिसेस ने कई बार बोला है कि उनसे बात करो, जाने दो, भूल जाओ सब बातें, सब दिल से निकाल दो जो भी हुआ है अपना। लेकिन वो मैं निकाल नहीं पाया 5 साल से। मुझे बहुत लोगों ने समझाया कि निकाल दो गुस्सा, थूक दो, जो भी है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ। अभी फिलहाल मुझे बात करना चाहिए। आज मेरे मिसेस का बर्थडे भी है आज, उसको मैं आज बोल लूंगा कि मैं आज घर जाने के बाद बात करूंगा। आइए, मिसेस इंडिया है, कल उसका स्पीच था यहाँ पर, लेकिन उसको भी पता नहीं मैं माँ से बात करना नहीं चाहता। उसको सबको बोला था मैंने माँ से बात नहीं करूंगा। किस विषय ऐसा हुआ है वहां पर घर पे कि मेरे भाई ने मुझे मतलब 30-40 लाख रुपए का लोन मेरे अंग पे डाल दिया था, और माँ ने मेरे छोटे भाई के साथ में सपोर्ट ज्यादा किया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे औरत के साथ मैं बाहर निकल गए 5 साल, जो भी उन्होंने संभाला, मेरे मिसेस ने संभाला है, जो भी अभी घर दर सब चला है उन्होंने संभाला पूरा। अभी जैसा मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मतलब यहाँ पर आने का भी विशेष तो बात ऐसी थी कि मेरा प्रोग्राम तो फिक्स नहीं था यहाँ पर आने का, मेरा कुछ मेरा इरादा भी नहीं था, क्योंकि मिसेस का था फीस था, उसको मैं बोला तू चले जा, तेरा तो प्रोग्राम यहाँ पर है और तू क्यों कैंसिल करना चाहेगी। तो कैसा करके वो तैयारी कर ली थी उसने, फिक्स हो गया था, और उसके साथ में मैंने बच्ची तैयार किया था, मेरी साली की लड़की, उसको आना था यहाँ पर, लेकिन वो उसका कैंसिल हो गया, मतलब कि वो नहीं आ सका, उसे मतलब उसकी तबीयत खराब होने के कारण। लेकिन मेरा आने का फिक्स था, मतलब मैं इसको इतना आगे न जोड़ नहीं सकता था, मैं हमेशा इसके साथ मिसेस इंडिया रहती थी तो मैं इसके साथ हमेशा रहने का, इस बार मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मतलब इसका कारण ऐसा था, मुझे तो आना है, लेकिन मेरा पास मुझे बैंक से एक नोटिस आया था सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली कोर्ट से, कि मुझे 7 तारीख को कोर्ट में हाजिर रहना है वहां पर, मतलब स्टे में कंप्यूटर पर दिख रहा है कि मुझे 7 तारीख को कोर्ट में हाजिर रहना है, और मेरा समन्स निकल चुका है और मुझे जाना है। मैं उस कारण से मैं नहीं आ सकता, मैं इसको बोला मैं नहीं आ सकता, मेरा समन्स निकल चुका है, मैं नहीं आ सकूंगा, क्योंकि मेरा समन्स घर आ जाएगा आपसे। तो समन्स आ ही नहीं रहा है मुझे अभी तक। मैं बोला फिर चल जैसा होगा देखा जाएगा बाबा के तरफ से, तो मैं निकल चुका हूँ, लेकिन अभी तक तो समन्स आया ही नहीं हुआ मेरे पास, और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। पता नहीं वो चमत्कार है, अभी जो लग रहा है कि मुझे बाबा ऐसा बोल रहे हैं कि जा तो मेरी माँ से बात कर, सब अच्छा हो जाएगा, तो मैं भी आके बात करूँगा।
तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आप अपने अंदर करके जाएंगे, जाते ही अपनी माँ से बात करो और फिर हमेशा प्यार से रहो। ठीक है।
और इसमें दादी जी का भी सपना था, दादी जी का, दादी यहाँ पे आके गए जो के 20 साल पहले आके गए वाले यहाँ पर, उन्होंने भी बोला था कि जाके तू अबू यहाँ पे जाके आ पर्वत पर, तो वहां पे जाके तुझे ज्ञान मिलेगा कुछ चीज का। मैं उस टाइम पे मैंने इग्नोर नहीं किया, मतलब सोचा नहीं ऐसा कि मैं यहाँ पे आ सकूंगा, लेकिन दादी जी का भी सपना मेरा पूरा हो गया, आप जो आप आ गए हो।
हाँ, तो उनका भी संकल्प पूरा हुआ, और हाँ, कई बार क्या होता है कि हम ऐसी दुश्मनी मन में पाल लेते हैं कि जिंदगी भर यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसको साथ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ शिव बाबा जो हैं वो हमें रियलाइज करवाते हैं कि ये सब चीजें जो हैं ये आत्मा अपने साथ नहीं लेकर आई है, हम अपने साथ क्या लेकर के आए हैं, सुख शांति प्रेम आनंद ये सब, और यही हमें सबको देना है।
कि तो सब यहाँ पर सब जन माँ की बात कर रहे थे, जिनसे मैं 8-4 दिन से यहाँ पे रहा हूँ, हर बात मुझे माँ की याद दिला रहे थे हर बात यहाँ पर जो भी है। तो वही सब समय जी
हो सके तो यहाँ से ही शुरू कर दो फोन पे बात करके,
मैं सामने जाके बात करके माफी मांग के फिर मैं कर दूंगा उस समय,
ठीक है,
इसलिए मैं बोल दूंगा।
मैं धन्यवाद बाबा जी को देती हूँ कि मैं जो 5 साल में नहीं कर सकी वो 4 दिन में बाबा ने कर दिया, इससे बड़ी बात क्या है। मेरा यहाँ आने का संकल्प पूरा हुआ, मैं मेरे सास से बात करने के लिए इनके पीछे हर रोज बात बोलती थी, जैसी है वैसी है लेकिन आपकी माँ है, मेरी जैसी पत्नी 1000 बार मिलेंगी लेकिन माँ आपकी जो माँ है ऐसी कभी नहीं मिलेंगी, माँ को बात करो पहली बहू होगी। मेरे बारे में मेरे माँ सास के विचार अच्छे नहीं है क्योंकि मैं मिसेस वो ये है, फिर भी मैं बोलती हूँ मेरे बारे में जो बात करना है उनको करने दो, आप उनके बेटे हो आप उनको बात कीजिए। लेकिन मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ कि मेरे बर्थडे पे मेरे पति मेरे सास से बात करेंगे, मेरा सपना पूरा हो रहा है। धन्यवाद।
हेलो, ओम शांति। मैं यहाँ मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, क्या मुझे कहना था, इतने सारे एक्सपीरियंसेस सुन ले। मेरे पहले दो जिन्होंने एक्सपीरियंसेस बताए वो इतने ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग लेकिन इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल थे कि मैं सच में भूल गई हूँ मुझे क्या कहना था। बट यहाँ आके 4 दिन मैंने बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी शांति और बहुत ज्यादा प्यार का एहसास मुझे हुआ। जब मुझे पता था कि मुझे परफॉर्म करना है भरतनाट्यम यहाँ आके, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि क्या होगा, स्टेज होगा या नहीं, लाइट्स होंगे या नहीं, क्या यहाँ पे व्यवस्था होने वाली है, इसके बारे में इतना डिटेल में कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। लेकिन जब मैंने यहाँ आके परफॉर्म किया और प्रोफेशनल जो थिएटर्स होती है मुंबई में उससे ज्यादा बड़ा थिएटर, उससे अच्छा लाइट का संयोजन पूरा, तो मुझे बहुत ही ज्यादा तृप्ति मिली यहाँ के भरतनाट्यम परफॉर्म करके। और मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में वापस जरूर आना चाहूंगी, आप मुझे कभी भी बुलाइए, मेरे स्टूडेंट्स को लेके भी कभी जरूर आके परफॉर्म करना चाहूंगी, यही मेरी सेवा हो सकती है टुवर्ड्स द सेवा दैट आप कर रहे हो। पिछले साल मैं दादर सेंटर से जुड़ी और अंजलि दीदी और सुनीता दीदी की वजह से मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद सबका एक्सपीरियंस सुनने के बाद यह एहसास हुआ कि पहली बार मैं, एक तो मैंने बोला भी नहीं था उनको कि मैं आना चाहती हूँ, मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता है, लेकिन इतनी आसानी से मैं यहाँ तक आ गई, मैंने स्पीच भी दी, मैंने परफॉर्म भी किया, तो मतलब मैं कितनी लकी हो सकती हूँ, इसका एहसास मुझे 4 दिनों के बाद बहुत ज्यादा हो रहा है। भरतनाट्यम में परफॉर्म करती हूँ मैं, टीवी पे भी दिखती हूँ, लेकिन 4 दिनों में मेरा यहाँ का परफॉर्मेंस देख के इतने लोगों ने मुझे प्यार दिया है, रास्ते में रोक रोक के किसी ने हक किया, किसी ने बार बार आके बोला, मुझे सच में भरतनाट्यम के लिए इतना अप्रिसिएशन कहीं पे नहीं मिला है। थैंक यू सो मच टू ब्रह्म कुमारी, थैंक यू सो मच टू बाबा कि ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, अब मुझ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है और मुझे पता है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली क्या है और उसका मैं ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की कोशिश करूंगी। और एक और चीज कहनी है कि लास्ट ईयर मैं जब कनेक्ट हुई उसके बाद मैं रेगुलरली नहीं जाती हूँ सेंटर में, लेकिन मेरी बेटी का मतलब मेरी स्टूडेंट का अरंगेत्रम हुआ भरतनाट्यम का, तब मैंने अंजलि दीदी को बुलाया था और जो एक कनेक्ट थोड़ा सा छूट गया था वो यहाँ के वापस कनेक्ट बाबा के साथ जुड़ गया है डेफिनेटली, और वो छूटा नहीं था, आई मीन आई नो दैट ही इज विथ मी। एंड एक होता है कब समय आता है आपकी लाइफ में जो एक एक करके ब्लॉकेजेस छूटने लगते हैं, एंड आई फील दैट सिंक्रोनिसिटी, आई हैव बीन फीलिंग इट फॉर लास्ट 1 ईयर एंड इट हैज बीन रियली अमेजिंग। और मैं अंजलि दीदी और सुनीता दीदी का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी। और जो एक चीज छोड़नी है तो दान करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन क्योंकि मुझे वापस याद आ गया कि मैं एक सोल हूं और एक यूनिक सोल हूं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कंपैरिजन ना करूं। और सबसे ज्यादा मतलब दो दूसरे लोगों में कंपैरिजन तो बहुत डिफिकल्ट है छोड़ना, क्योंकि वो बहुत आसान चीज होती है, गॉसिपिंग में भी वो हो जाता है और उसमें मजा आता है, लेकिन खुद का किसी के साथ कंपैरिजन करना खुद का गला घोटने जैसा है, ये मुझे समझ में आया है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो ना करूं, ताकि हम खुद अच्छे से सांस ले सकते हैं, हमारी सोल और आत्मा। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच, आई रियली मीन इट।
ओम शांति। सभी ने अपने अनुभव बताया, मैं अनुभव नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं नई नहीं हूं, मैं 91 से इस संस्था से जुड़ी हुई हूं और मैं पांचवी बार यहां आई हूं। बस मैं कुछ लिखती हूं, तो जो हमारा विषय था उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, बस मैं आपको वो सुनाना चाहती हूं। उसका शीर्षक है, इस युग की नारी, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण की करनी है तुम्हें तैयारी, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भर आगे बढ़ना है। नारी हूं मैं इस युग की, कोमल हूं पर कमजोर नहीं, मैं किसी के हाथ की बागडोर नहीं, सदियों से तुमने देखा मुझे अत्याचार सहते, सारा समय घर की चार दीवारी में परिवार संभालते, ताने खूब मिले, आवाज न मेरी कोई सुन पाया, हिम्मत नहीं थी उफ करने की, पर अब बदल गई यह परिभाषा, मैं शक्ति स्वरूपा नारी हूँ, मैं जगजननी सब पर भारी हूँ, दुनिया का अब मुझको डर नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं, मैं झांसी की रानी लक्ष्मी हूँ, मैं सरस्वती लक्ष्मी शीतला हूँ, मैं दुर्गा भी बन जाऊं, मन मोहिनी देवी सी, वक्त पड़े मैं काली का रूप दिखलाऊं, मैं जज्बातों का ढेर हूँ, मैं साहस त्याग दया ममता की मूर्त हूँ, रोक न पाए अब कोई मुझको, मैं खुद में ही भरपूर हूँ, कंधे से कंधे मिला कर रही विकास स्वयं व देश का, अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ मेरी पहुँच नहीं, विभिन्न क्षेत्र जैसे कि हमको पता है आज महिलाएं हर क्षेत्र में है, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग साइंटिस्ट और सारी क्षेत्रों में वो सब पता है, अंतरिक्ष तक पहुँच गई है, सेवाएं हो प्राइवेट व सरकारी, पुरुषों के समान नारी भी समान पद की अधिकारी, अपने अंदर की शक्ति को अब मैं तुम्हें दिखलाऊंगी, बिना रुके बिना रुके बिना थके, मैं हर मंजिल को पार कर जाऊंगी, मैं हर मंजिल को पार कर जाऊंगी। अंत में दो विशेष लाइन है, औरत मोहताज नहीं किसी जुबान की, औरत मोहताज नहीं किसी जुबान की, वो खुद बागवान है इस कायनात की, वो खुद बागवान है इस कायनात की। धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और जिन्होंने नहीं सुनाया उनके पास भी बहुत अच्छे अनुभव होंगे ही, कई सामने आने में संकोच करते हैं, लेकिन अनुभव तो मैं समझती हूँ सबके पास बहुत अच्छे अच्छे होंगे। अब जो ये अनुभव आप सभी ने यहाँ पर किए हैं, तो कहते भी हैं कि कोई चीज, कोई हट करके यूनिक चीज मिलती है तो आप अनेकों से शेयर करते हैं, जाएंगे आप शेयरिंग तो करेंगे ही, अपने परिवार के अंदर अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करेंगे, तो आप जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो दूसरों को भी एक लगता है अच्छा ऐसा तो क्यों नहीं हम भी ऐसा अनुभव करें। तो मैं ऐसा कहूंगी कि आप अपने स्थान पर जा रहे हैं, यहाँ के वाइब्रेशन यहाँ के अनुभव अपने साथ लेकर के जाएंगे और अपने घर परिवार के अंदर भी वैसे ही वाइब्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपने वर्किंग स्थान पर भी आप यही वाइब्रेशन बनाएंगे तो बहुत अच्छा ही सबको एक लाभ हो जाएगा, क्योंकि जो आपने इतने दिन सुना है, इतने दिन आपने जो देखा है और आप समझते होंगे ये हमको ही जरूरत नहीं है लेकिन सबको जरूरत है, ये मैं ऐसा कहूंगी, ये मेरी शुभ भावना है।
और बाकी तो अभी आप इस बार आए हैं, मैं समझती गेस्ट बन करके आए हैं, सभी गेस्ट बन करके आए हैं, फिर दोबारा कब आएंगे और कैसे आएंगे? गेस्ट बन करके आना चाहेंगे? दोबारा गेस्ट बन करके नहीं आना है, दोबारा जब आएंगे आप भगवान के बच्चे बन करके आएंगे, अपने घर में बच्चे बन करके आएंगे, गेस्ट नहीं। गेस्ट दो दिन का होता है, लेकिन बच्चे तो अपने घर में आते हैं, तो बच्चे बन करके आएंगे। जिस सेवा केंद्र से आप आए हैं, उस सेवा केंद्र से आप अपना संबंध रखेंगे, आएंगे जाएंगे, वहां पर क्लासेस करेंगे, तो अवश्य ही दोबारा आप बच्चे बन करके आएंगे। उसका जो अनुभव होगा वो बहुत और हट करके अच्छा होगा, यही मेरी शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति। अभी हम सभी दो मिनट साइलेंस में बैठेंगे परमात्मा की स्मृति में।